الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ حجرات کی یہ آخری گروپ آف آیات ہیں، جو پچھلی آیات تھیں ان کا خاکہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آداب، نبی علیہ السلام کے آداب اور صحابہ کرام کے آداب، پھر انسانوں کے درمیان جو اخوت اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر فرمائی اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو باہمی ایمان والوں کے درمیان کیسے معاملات ہونے چاہیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے. چھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا کہ تم آپس میں یہ چھ چیزیں نہ کیا کرو. اس کے بعد جو آج آیات تلاوت کی ہیں تو اس کی تفسیر سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 126 کے اوپر. پہلے خلاصہ تفسیر دیکھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ خلاصہ تفسیر چلاتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے. تو معرف القرآن کے اندر جو ترجمہ ہے ہم ابھی اس سے پڑھ رہے ہیں، اس ترجمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے. گنوار کا مطلب ہے کہ جو جاہل، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا جاہل اور گنوار. تو عراب کو گنوار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عراب وہ لوگ ہیں جو کہ شہروں سے باہر دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور دیہات کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں تعلیم و تربیت کا ویسا نظام نہیں ہوتا جیسا شہروں میں ہوتا ہے. تو عمومی طور پر جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ عرابی لوگ تھے، یعنی مدینہ منورہ کے باہر یہ یعنی دیہات میں رہا کرتے تھے. دیہات سے یہاں پر مراد جو ہے وہ جو عرب کے دیہات ہیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے، عرب میں جو صحرا کے درمیان نخلستان ہوا کرتے ہیں، اور ان نخلستانوں کے اندر دیہات بسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان علاقوں کے رہنے والے لوگ وہ یہاں پر مراد ہیں. قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے کہ یہ لوگ ایمان، کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا تم یعنی دعویٰ نہ کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. اب اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو نہیں کاٹ لے گا, کاٹ لے گا کا مطلب نہیں ضائع کرے گا تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی شے, کوئی بھی چیز. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے, رحیم ہے. انما المؤمنون سوائے اس کے نہیں, انما کا ترجمہ سوائے اس کے نہیں سے کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ صرف اور صرف, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف یہی ایک بات ممکن ہے, صرف اور صرف یہی ممکن ہے. انما کا یہ ترجمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کلمۃ الحصر بھی کہتے ہیں. حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا, محصور کر دینا, کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں محصور کر دینا, ٹھیک ہے. تو ترجمہ اس کا کیسے بنتا ہے کہ صرف اور صرف یہی ایک ممکنات میں سے ہے, یہی ایک پوسیبلٹی ہے کہ المؤمنون, ایمان والے لوگ, الذین آمنوا باللہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ پر, ورسول ہی اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر وہ شبہوں میں نہ آئے, یعنی انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر شبہ نہ کیا, ڈاؤٹ نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم, اور جدوجہد کری, جاہدو کا مطلب انہوں نے جدوجہد کری, بے اموالہم اپنے مالوں سے, و انفسہم اور اپنی جانوں سے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون, وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں, ٹھیک ہے. اولئک الصادقون اگر ہوتا نا تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ یہ سچے لوگ ہیں. اولئک ہم الصادقون, ہم جو بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے تو اس سے یہ ترجمہ بنتا ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں, یعنی ان کے علاوہ لوگ سچے نہیں ہیں, ان کے علاوہ صادقین نہیں ہیں, بلکہ یہی صادقین لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہی سچے لوگ ہیں, جیسے ترجمہ کیا نا یہاں پر, وہی سچے لوگ ہیں, صادقون ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں, اور ایمان والوں کی مزید تفصیل کیا, تفصیل کری ایمان والوں کی, کہ ایمان والے کون ہیں, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر اپنے ایمان پر شک نہیں کرتے, لم یرتابو, انہوں نے شک نہیں کیا اپنے ایمان کے اوپر, ٹھیک ہے, یعنی ڈاؤٹ میں مبتلا نہیں ہو گئے, شک میں مبتلا نہیں ہو گئے, کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کو زائل کر دیتا ہے, کینسل کر دیتا ہے. شک کرنا, جب ہم شک کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, جیسے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا اور اس حادثے کے اندر ایسے معاملات ہوئے کہ جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ ایسا کیوں ہوا, اگر اللہ تھا تو اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا, ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو بات کہی نا کہ بھئی اللہ اگر ہے تو اس نے کیوں اجازت دی ایسا ہونے کی, ٹھیک ہے, تو یہ شک پڑ گیا اللہ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ شک جو ہے نا وہ ایمان کو کینسل کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. تو لم یرتابو, انہوں نے شک نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجاہدہ بھی کیا, جدوجہد بھی کری اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں, یعنی نیک اعمال بھی کیے, ٹھیک ہے, نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, صدقہ خیرات بھی کیا اپنے اموال کو استعمال کر کے اللہ کے راستے میں, جب لڑائی کرنے کی ضرورت پڑی تو لڑائی بھی کری, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون, سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والے جنہوں نے یہ سارے کام کیے, اولئک ہم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صادقون میں سے ہیں, یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صادقون ہیں, سچے لوگ ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہہ دیجئے کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین, یعنی اپنی دینداری تم اللہ کو جتلاتے ہو. اللہ کو جتلاتے ہو سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو بتاتے ہو کہ جی تم یعنی دیندار ہو گئے ہو, اللہ کو حقیقت پتہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کو جتلا نہیں سکتے اور بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو کون دیندار ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے، تو تمہیں اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. کل شیء علیم، علم رکھنے والا. عالم بھی علم رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن علیم یہ وہ ذات ہوتی ہے جو کہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ہوتی ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اس نے نہیں، یہ لوگ یعنی یہ جو عربی ہیں، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ کے اوپر کہ یہ مسلمان ہو گئے. ان اسلموا، ان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سے، اسلموا یہ اسلام لے آئے، یعنی یہ عربی آپ کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ میرے اوپر تم احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا. ٹھیک ہے، میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تمہارے اوپر ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہو. یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے نا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے کی ہدایت دی ہے. تو اللہ پر احسان مت جتلاؤ، اللہ کے رسول پر احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے بھیدوں کو، غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. بصیر بھی ایک مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے علیم ہے نا سب کچھ جاننے والا، اسی طرح بصیر سب کچھ دیکھنے والا. بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک محاورتن کم لفظی ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اسی کو ریپیٹ جو ہے وہ ہم خلاصہ تفسیر کے تحت کرتے ہیں، کچھ اور باتیں بھی آئیں گی اس کے تحت. تو خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 126 پر، معارف القرآن جلد 8، 126 جیسے اوپر لکھا تھا، 125 کے بعد پھر اگلا پیج ہے. تو اس خلاصہ تفسیر میں، جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے لیا ہے، یہ خلاصہ تفسیر جو ہے، حضرت نے شروع میں بات بتا دی تھی کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے خلاصہ تفسیر کو نقل کیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بعض گنوار، گنوار مطلب جاہل، کیونکہ یہ دیہاتی لوگ تھے، شہر کے رہنے والے لوگ نہیں تھے، تو وہاں پر علم اور تربیت وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا دیہاتوں میں، تو اس وجہ سے ان کو گنوار کہا ہے، جاہل گنوار جیسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں بھی. تو یہ بعض گنوار، تو یہ کون تھے؟ بریکٹس میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بنی اسد وغیرہ کے، آپ کے پاس آ کر جو ایمان لانے کے مدعی ہوتے ہیں یعنی دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اس میں کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ایک تو کذب، کہ بلا تصدیق قلب محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا لیکن اللہ تو جانتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ تو یعنی کہہ رہے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، کیونکہ وہ موقوف ہے تصدیق قلبی پر، یعنی دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں، اس بات کی دل سے تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ किसी दूसरे की बात को कंफर्म करना, वेरीफाई करना, ठीक है। एक होता है सिद्क, सिद्क का मतलब होता है सच बोलना, ठीक है। किसी ने सच कहा तो उसको सिद्क कहेंगे। तस्दीक ये एक दूसरा बाब है, ठीक है, एक दूसरा पैटर्न है। इसका मतलब है कि किसी दूसरे के बारे में कहना कि वो सच कह रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे किज्ब का लफ्ज होता है, किज्ब का मतलब होता है झूठ बोलना, और तकजीब का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के बारे में कहना कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी तकजीब करना, ठीक है। तो तस्दीक और तकजीब ये दोनों इस तरह इस्तेमाल होते हैं किसी दूसरे के बारे में, ठीक है। तो तस्दीक, तस्दीक कल्बी का मतलब क्या कि नबी अलैहिस्सलाम की बातों को कहना कि वो सच हैं और दिल से इसकी तस्दीक करना, ठीक है, जुबान से खाली नहीं, दिल से तस्दीक करना। तो ईमान तो मौकूफ है, यानी डिपेंड करता है तस्दीक कल्बी पर। अगर दिल से तस्दीक नहीं करी तो ईमान हुआ ही नहीं। तो फरमा रहे हैं कि और वो मौजूद नहीं है, यानी तस्दीक कल्बी तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसा अनकरीब आता है, वलम्मा यदखुलिल ईमानु, कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि ईमान तो अभी दाखिल ही नहीं हुआ तुम्हारे दिलों में, लेकिन हाँ यूं कहो कि हम मुखालिफत छोड़कर मुती हो गए हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वलाकिन कुलू, लेकिन तुम ये कहो असलमना, हम मुसलमान हो गए। तो मुसलमान हो गए का मतलब क्या हो, यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, ठीक है, ये मतलब नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि उन्होंने मुखालफत मुसलमानों की छोड़ दी है, मुसलमानों से कोई उनका झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के उन्होंने गोया के हथियार डाल दिए, ठीक है ना, अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, मुती हो गए हैं, ठीक है, अतात का इकरार कर लिया है कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है। तो अतात जो है वो फरमा रहे हैं कि अतात बमानी तर्क की मुखालिफत, महज जाहिरी मुवाफिकत से भी मुतहक्किक हो जाती है, मुतहक्किक हो जाती है, ठीक है। यानी कोई शख्स दिल से राजी ना हो किसी बात मानने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जबरन किसी की बात मान रहा है, जबरन उसके हुक्म पर अमल कर रहा है, लेकिन दिल से राजी नहीं है, ठीक है। तो दिल से राजी नहीं है, लेकिन अगर जबरन भी उसकी मुखालफत छोड़ दी है और उसकी मुवाफिकत जाहिरी तौर पर शुरू कर दी है, ठीक है, तो इसको भी अतात कह दिया जाता है, ठीक है, इसको भी अतात कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे घरों में भी होता है ना कि भाई बच्चा बात मानना नहीं चाह रहा, लेकिन किसी वजह से वो आपसे डर करके या अपनी कोई कोई मतलब निकालने के लिए आपके हुक्म पर अमल कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि जी बता बच्चा आपकी अतात कर रहा है, लेकिन दिल से तो राजी नहीं है ना, ठीक है, तो जाहिरी तौर पर अतात तो हो रही है। आगे फरमाए कि और बाकी ये कि अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए ईमान का दावा मत करो, और गो अब तक तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन अब भी, यानी अभी तक तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला आगे इनके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे, रास्ता बंद नहीं कर रहे कि जी अब तुम ईमान नहीं लाए तो अभी तुम कभी भी ईमान नहीं ला सकोगे, बल्कि फरमा रहे हैं कि अब भी अगर तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब बातों में कहना मान लो, सब बातों में, ठीक है, देखें ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो तमाम मामलात में, ठीक है, अभी तुम जो है ना सिर्फ चंद मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो, विच इज कि जैसे नमाज पढ़ रहे हो और मस्जिद में आ रहे हो और बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे हो, तो ये जो तुम आमाल कर रहे हो ना, ये चंद मामलात में तुम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे हो, ठीक है, लेकिन अल्लाह से अल्लाह की डिमांड क्या है, वो ये है कि सब बातों में अल्लाह उसके रसूल की बात मानो, ठीक है। तो वो क्या है, सब बातें से क्या मुराद है यहाँ पर, ब्रैकेट्स में इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जिसमें ये भी दाखिल है कि दिल से ईमान ले आओ, दिल से ईमान ले आओ, ठीक है, ये काम तुमने अभी तक नहीं किया। भाई ये भी तो अल्लाह का हुक्म है ना कि दिल से ईमान लेकर के आओ, दिल से तस्दीक करो, ये भी तो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है, ये तुमने नहीं किया, लेकिन आमाल में तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हो, जाहिरी अमाल के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हो, लेकिन जो दिल का मामला है उसमें तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो इसको कामिल अतात नहीं कहेंगे। कामिल अतात किस चीज को कहेंगे कि दिल से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हो और जाहिरी अमाल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान के चल रहे हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला यही बात, यही ऑप्शन इनको दे रहे हैं कि अगर अब भी तुम सब बातों में कहना मान लोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल में से जो के बाद ईमान के होंगे, महज इस वक्त के कुफर व किज़्ब की वजह से जो के इस वक्त के एतबार से उस वक्त के एतबार से गुज़श्ता होगा, ठीक है, यानी अभी तो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना, इस वक्त तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर मुस्तकबिल में तुम कामिल ईमान ले आओ तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे इस मौजूदा झूठ को माफ कर देंगे, ठीक है, अभी जो तुम झूठ बोल रहे हो ना इसको अल्लाह ताला माफ कर देंगे, और आइंदा जब ईमान लाने के बाद तुम जो भी अमाल करोगे तो उसमें जरा बराबर भी कम नहीं करेंगे, उसका पूरा पूरा सवाब तुम्हें देंगे, ठीक है। मौजूदा झूठ की वजह से तुम्हारे मुस्तकबिल के अमाल के सवाब में कमी नहीं करेंगे कि ये लोग तो मुझसे झूठ बोलते हुए आए थे, तो अब जो ये अमाल कर रहे हैं ईमान लाने के बाद जो अमाल कर रहे हैं, मैं इनका इनको पूरा अजर नहीं दूंगा इनके माजी के झूठ की वजह से, नहीं ऐसा नहीं करेंगे अल्लाह ताला, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला बेशक गफूर और रहीम है, ठीक है। भाई जब इंसान कोई गलती कोताही के ऊपर नादम शर्मिंदा हो जाता है और उस गलती कोताही को दूर कर देता है, तो अब अल्लाह ताला ना बुग़्ज़ नहीं रखते उससे कि पहले तो इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब जो है वो आकर के मुती फरमाबरदार तो हो गया है लेकिन इसका बैकग्राउंड तो सही नहीं था, तो अब जो है ना मैं इसके साथ दूसरे दर्जे का सलूक करूंगा, तीसरे दर्जे का सलूक करूंगा, ठीक है, यानी मैं उसको यानी पूरी इज्जत नहीं दूंगा बल्कि कम इज्जत दूंगा, क्योंकि पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम इंसान कहते हैं ना कि भाई एक शख्स हमारे पास आता है और वो पहले जो है वो हमारे हमारे साथ दुश्मनी रखता था, अब जो है वो दोस्ती कर ली है, तो हम फिर भी उससे शको शुबे में रहते हैं कि भाई उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसका माजी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से ना मैं इसके साथ जरा एहतियात वाला मामला करूंगा। ये इंसानों का मामला होता है, इंसान एहतियात करते हैं इसलिए कि इंसानों को दिनों के हाल का नहीं मालूम होता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला का तो ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह ताला को तो दिनों के हाल मालूम है, तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है ना वो पिछले मामलात को माफ कर देते हैं। अगर किसी ने अपने दिल की इस्लाह कर ली तो अल्लाह ताला फिर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला फिर उसकी वजह भी बता रहे हैं कि इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं और बहुत रहम बहुत मेहरबान है, ठीक है। इन आयात के तर्जुमे और खुलासा तफसीर के बारे में किसी को कोई इश्काल हो तो बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए। अच्छा ये हो गई आयत नंबर 14 तक, इसके बाद आयत नंबर 15 में फरमा रहे हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, तो अब इसके खुलासे तफसीर में लिखते हैं कि अब हमसे सुनो कि कामिल मोमिन कौन लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इन्नमल मुमिनूना ना अब यहाँ पर ईमान वालों का जब तज़किरा होता है ना कुरान के अंदर तो उससे मुराद कामिल ईमान वाले होते हैं, ठीक है, कुरान में ईमान वालों का जहाँ भी तज़किरा है वो कामिल ईमान वालों का तज़किरा है, ठीक है ना, हमारे जैसे नाकस ईमान वालों का तज़किरा नहीं है, ठीक है। तो ये फरमा रहे हैं कि अब हमसे सुनो, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कामिल मोमिन कौन है, ताकि अगर तुमको मोमिन बनना है ना तो वैसे बनो, ठीक है, यानी हम तुम्हारे लिए मॉडल सेट कर रहे हैं कि ऐसे मोमिन बनो। तो पूरे मोमिन वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर ईमान पर मुस्तमर भी रहे, मुस्तमर का मतलब होता है के कंटिन्यूड रहे, ठीक है, उन वो मुस्तकिलन ईमान की हालत में रहे, इस्तिमरार का मतलब यही होता है कंटिन्यूटी, ठीक है, तो मुस्तमर भी रहे यानी कंटिन्यूड रहे अपने ईमान पर, यानी उम्र भर कभी शक नहीं किया। ठीक है, डामाडोल नहीं रहते थे कि भाई कभी शक में पड़ गए, फिर उसके बाद जो है वो शक, फिर उसके बाद यकीन की शक्ल में आ गए, फिर उसके बाद शक में चले गए, फिर उसके बाद यकीन की शक्ल में आ गए, फिर उसके बाद शक में चले गए। ये मामला जो है ना, ये ईमान वाले नहीं करते, ये मुनाफिकीन का ऐसा हाल होता है। ठीक है, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, डोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का हाल यही है ना कि हर वक्त ही जो है वो अनसर्टन रहते हैं हम लोग। ठीक है, हमें हमें दवाम और इस्तिमरार हासिल नहीं होता। ठीक है, तो ये मुनाफिकत की अलामत है। तो ईमान की क्या अलामत है? ईमान की अलामत अल्लाह ताला खुद डिफाइन कर रहे हैं कि उम्र भर ईमान पर मुस्तमर रहे यानी शक नहीं किया, और अपने माल और जान से खुदा के रास्ते में यानी दीन के लिए मेहनत उठाई। ठीक है, जिसमें जिहाद वगैरह सब कुछ आ गया, सिर्फ ये नहीं कि मैदान जंग में जाकर के तलवारें चला करके वापस आ गए, बल्कि जो अमन का दौर था उसमें भी मुजाहिदा करके अपने आप को नेकी पर जमाए रखा और गुनाहों से बचाए रखा। ठीक है, इसको कहते हैं कि खुदा के रास्ते में मेहनत उठाई। ठीक है, ये अल्लाह ताला ना निशानियां बता रहे हैं ईमान वालों की, तो ये निशानियां बता दी। फिर उसके बाद फरमाया ये लोग हैं सच्चे, यानी पूरे सच्चे, और यानी पूरे सच्चे लोग, थोड़े से सच्चे लोग और बाकी झूठे, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे सच्चे लोग ये हैं। और यूं अगर सिर्फ तस्दीक ही हो तब भी नफ्से सिद्क हो जाएगा, बखिलाफ तुम्हारे के अदना दर्जे का ईमान के तस्दीक है वो तक हासिल नहीं है। ठीक है, यानी अगर सिर्फ तस्दीक ही हो तब भी नफ्से सिद्क हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान शक करता है ना ईमानियात के ऊपर, तो उसको यानी तस्दीक कल्बी नहीं कहा जाएगा, दिल से तस्दीक करना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बेशक बहुत ही मुशाहिदे के लेवल की तस्दीक ना हो। ठीक है, देखें ईमान के ना दर्जे होते हैं। एक तो ईमान होता है कि आपने किसी की बात सुनी और उस पर अंधा एतमाद करते हुए उसकी बात की तस्दीक कर दी। ठीक है, कि भाई जो कह रहा है ना सही ही कह रहा होगा। ठीक है, ऐसा होता है ना अंदाज, हम कहते हैं भाई जो कह रहे हैं ये साहब सही ही कह रहे होंगे, तो जो भी कह रहे हैं चाहे जैसा भी कुछ है मैं उसकी तस्दीक करता हूं। ठीक है ना, तो ये ईमान के, ये नफ्से ईमान कहलाता है या नफ्से तस्दीक कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको मिनिमम लेवल ऑफ तस्दीक हासिल हो गया। ठीक है, लेकिन इससे ऊंचा दर्जा क्या होता है कि वो जो कह रहा है तो उसके ऊपर ऐसे तस्दीक करना कि गोया के आप खुद उसको देख चुके हैं। वो जो कह रहा है आपने उसकी कही हुई बात को देखा नहीं है, लेकिन गोया के ऐसे आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जैसे आप देख चुके हैं, यानी जिसको यकीन के दर्जे में तस्दीक करना कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर फरमा रहे हैं कि बेशक तुम्हारे अंदर यकीन के दर्जे की तस्दीक नहीं है अभी, लेकिन नफ्स तस्दीक भी अगर है होगी ना कि तुमने अंधा एतमाद करते हुए नबी अलैहि सलाम पर तुमने उनकी कही हुई बातों की तस्दीक कर दी, तो भी तुम्हें नफ्स सिद्क हासिल हो जाएगा। ठीक है, बखिलाफ तुम्हारे के अदना दर्जे का ईमान के तस्दीक है वो तक हासिल नहीं है। तो अराबियों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा तो ये हाल है कि तुम्हें नफ्स तस्दीक भी हासिल नहीं है। ठीक है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमने तो दिल से तस्दीक अभी तक करी ही नहीं है, और दावा करते हैं ईमान कामिल का, यानी तुम्हें बुनियादी जो बेस लेवल ऑफ तस्दीक है वो भी तुम्हें हासिल नहीं है, लेकिन तुम दावा जो है ना वो कामिल ईमान का कर रहे हो अपनी जुबान से। बस एक अमर कबीह तो उनसे ये सादिर हुआ, यानी एक बुरा अमर, कबीह को कहते, कबीह का मतलब होता है बहुत बुरा। ठीक है, तो एक बुरा अमर तो उनसे ये सादिर हुआ यानी किज्ब, कमा قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا इला किल ही मा हुआ बिमोमिनी, ठीक है, कि सूरह बकरा की जो बिल्कुल इब्तदाई आयात है उसका यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया है कि वमिन अन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यखदउन इल्ला अन्फुसहुम वमा हुम बिमुमिनीन। सूरह बकरा में जो मुनाफिकीन का तذكرہ है ना, ये उसकी इब्तदाई आयात है, ठीक है। तो उनका वहां पर भी अल्लाह ताला यही बात फरमा रहे थे कि भाई ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर उसके और आखिरत पर ईमान लेकर के आए, लेकिन ये असल में ईमान नहीं लेकर के आए, ठीक है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा अमर कभी ये है कि ये धोखा देते हैं, युखादिउन अल्लाह, खादा युखादिउ का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, तो एक तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरा ये कि धोखा भी दे रहे हैं अल्लाह उसके और ईमान वालों को। तो आप उनसे फरमा दीजिए कि क्या खुदा ताला को अपने दीन कबूल करने की खबर देते हो, ठीक है, तुम अल्लाह ताला को खबर देते हो, यानी अल्लाह ताला तो जानते हैं कि तुमने ईमान कबूल नहीं किया, बावजूद इसके जो तुम दावा कबूल करने का करते हो, तो लाजिम आता है कि खिलाफ इल्म खुदावंदी खुदा ताला को एक बात बतलाते हो, ठीक है। झूठ क्या चीज है? झूठ के बारे में आप में से अगर कोई बताए कि ये हुकूकुल इबाद में से है कि ये हुकूकुल्लाह में से है, किसी को पता है? झूठ बोलना ये हुकूकुल्लाह में से है कि ये हुकूकुल इबाद में से है? हुकूकुल इबाद में से है, ठीक, क्योंकि आप किसी बंदे से झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये हुकूकुल्लाह में से है, ठीक है, इन्होंने जवाब दिया हुकूकुल्लाह में से है। तो अब अगर इसका रीजन आप बता दें तो और भी अच्छा होगा कि ये हुकूकुल्लाह में से क्यों है, ठीक है, हुकूकुल्लाह में से झूठ है नहीं, ठीक है, हुकूकुल्लाह में से ही है, लेकिन क्यों हुकूकुल्लाह में से क्यों है ये? हालांकि झूठ तो आप किसी बंदे से बोल रहे होते हैं, तो लॉजिकली तो समझ में आता है कि ये बंदे का हक मार रहे हैं आप, उसको खिलाफ वाकया बात बता रहे हैं, तो उसको नुकसान होगा उससे, हुकूकुल्लाह में से ये क्यों है? हम असल में जो कहते हैं वो करते नहीं, क्योंकि झूठ बोलना ईमान के खिलाफ है। नहीं, इसलिए नहीं, अल्लाह का हक मारते हैं हम झूठ बोल करके। उसकी वजह ये होती है कि झूठ जो बोला जाता है ना वो माजी के बारे में बोला जाता है, ठीक है, कोई चीज जो है वो माजी में हो गई, या इवन अगर आप प्रेजेंट टेंस में भी बोल रहे हैं ना, वो प्रेजेंट टेंस भी जो है वो बहुत ही अभी हुआ हुआ काम कि भाई ये ऐसे हो रहा है, तो जो चीज गुजर रही है ना, गुजरती हुई चीज के बारे में आप झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो गुजरती हुई चीज के बारे में झूठ बोलने का मतलब क्या है? क्या ये गुना अल्लाह की तरफ से मना है? वो तो इवन हुकूक अलबात वाले भी जो गुना है वो भी तो अल्लाह की तरफ से मना है ना, जैसे गीबत करना वो भी तो अल्लाह ने ही मना किया ना, तो हुकूक ये गीबत करना जो है ये हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी होती है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, हालांकि मना तो अल्लाह ने किया है किसी गीबत करने से, ठीक है, तो ये तो बात ना बनी। तो झूठ बोलना जो है ना वो इसलिए अल्लाह का हक मारना होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुछ हुआ, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया, ठीक है ना, जो कुछ हुआ वो अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया, अल्लाह ताला ने उसको लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक एक चीज एक तरीके से हुई थी, और आप जो है वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं हुई थी, ठीक है ना, गोया कि आप जो है वो अल्लाह ताला के जो जो बनाया हुआ जो जो तकदीर है ना, आप उस तकदीर को झूठा करार दे रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीर को
आप झुटला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तकदीर में मामला जो है वो इस तरह से किया था कि भाई कल जो है बारिश हुई थी, ठीक है, तो अल्लाह ताला की तकदीर में था कि कल बारिश हुई, लेकिन आपने किसी को जाके क्या बोला, कल बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि बारिश नहीं हुई, तो आप दरअसल तकदीर इलाही की नफी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के इल्म, तकदीर इलाही क्या है, अल्लाह ताला का इल्म है। अल्लाह ताला के इल्म ये था कि कल बारिश हुई है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही सेट किया था मामले को, ठीक है, कि गुजरे हुए तारीख में बारिश हुई, ठीक है, लेकिन आप जो है वो उसको उसकी नफी कर रहे हैं। तो ये जो है ना वो अल्लाह ताला के इल्म को झुटला रहे हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि जो तुम दावा कबूल करने का करते हो ना, तो लाजिम आता है कि खिलाफ इल्म खुदाबंदी खुदा ताला को एक बात बतला दो कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात है कि तुम्हारे दिल ने कबूल नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने दिल से कबूल कर लिया है, ठीक है। तो भाई तुम इल्म खुदाबंदी को झुटला रहे हो ना, ठीक है। तो इस वजह से जो झूठ है ना, ये अल्लाह का हक मारना है, ये बंदे का हक मारना नहीं है। अलबत्ता जब झूठ बोल करके आप किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, झूठ बोल करके फॉर एग्जाम्पल उसको धोखा दे देते हैं ताकि उसका कोई माल आप हड़प कर लें झूठ बोल करके, ठीक है, या उसको जो है वो किसी नुकसान में मुब्तला कर दें, किसी और किस्म के नुकसान में, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना ये हुकूकुल इबाद में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन खालिसतन किसी बात को खिलाफ वाकया बयान करना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ठीक है, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, हालांकि आपने ये काम किया था, ठीक है ना। तो यहां तक जो है ना ये खिलाफ, ये हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि आप तकदीर इलाही की नफी कर रहे होते हैं झूठ बोल करके, ठीक है। तो ये जो झूठ बोला, तो इस तरीके से खिलाफ इल्म खुदाबंदी खुदा ताला को एक बात बतलाते हो, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को ये कहते थे ना आकर के, कोई अल्लाह ताला को थोड़ी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, हैं, अल्लाह ताला तो नहीं होते ना दुनिया में, कायनात में तो मौजूद नहीं होते। अल्लाह ताला किधर है, अल्लाह ताला कहाँ पर है, अल्लाह ताला तो अर्श के ऊपर है, ठीक है ना, और बाकी सब कुछ अर्श के नीचे है, तो मदीना तैयबा भी अर्श के नीचे है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो मदीना तैयबा में मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो यहां पर ये बात क्यों लिखी हुई है कि अल्लाह को तुम एक बात बतलाते हो, अल्लाह को से तो ये कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला से तो कोई कलाम नहीं कर रहे हैं ये काफिर लोग, ये मुनाफिकीन लोग, ये एराबी लोग, ये किससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बात अल्लाह के रसूल से, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल से बात करना ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह से बात करना, अल्लाह का रसूल इज नॉट इक्वल टू अल्लाह, ठीक है, अल्लाह का रसूल अल्लाह नहीं होता, अल्लाह का रसूल तो अल्लाह का बंदा होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरे नुमाइंदे से बात करी तो गोया कि तुमने मुझसे बात करी, ठीक है ना। जैसे कोई मुल्क जो है वो अपने सफीर को किसी दूसरे मुल्क में भेजता है, तो अब उस मुल्क के लोग जो है उसके सफीर से बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके सफीर से जो नेगोशिएशन होती है तो वो इस मुल्क से नेगोशिएशन कहलाती है, क्योंकि सफीर जो होता है वो मुल्क का नुमाइंदा होता है, ठीक है। तो जो अच्छे मुल्क होते हैं वो अपने सफीरों को इतनी इज्जत देते हैं कि भाई हमारे सफीर से तुम मामला मामला तय कर लो, ये ऐसे ही होगा जैसे तुमने हमसे मामला तय कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना अल्लाह जो है वो अपने रसूल को इतना अहम मुकाम देते हैं, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल से बात करना ऐसे ही है जैसे कि तुमने अल्लाह से बात कर ली, ठीक है। तो फरमाते हैं कि हालांकि ये महाल है, क्योंकि अल्लाह को तो सब आसमान और जमीन की सब चीजों की पूरी खबर है, और इलावा समावात वल अर्द के अल्लाह और भी सब चीजों को जानता है, ठीक है, क्योंकि अर्श के नीचे जो है वो सात आसमान भी हैं, समावात में कौन शामिल है, सात आसमान, ठीक है, और उसके अलावा जमीन, लेकिन इनके अलावा भी तो कुछ चीजें हैं अर्श के नीचे, ठीक है, अर्श के नीचे और क्या क्या चीजें हैं, जो कुछ आलम बरजख में है, वैसे तो आलम बरजख जो है वो जमीन ही का हिस्सा कहला सकता है, इसको कह सकते हैं कि जन्नत जहन्नुम, ठीक है, ये जन्नत जो है वो आसमानों के अलावा है, अलावा है, आसमानों के ऊपर है, ये सातवें आसमान के ऊपर,
ठीक है, तो सातवां आसमान एक अलग चीज है और जन्नत एक अलग चीज है जो कि सातवें आसमान के ऊपर है। ठीक है, अलबत्ता जहन्नुम के बारे में ये कह सकते हैं कि जहन्नुम जो है वो जमीन के अंदर ही है। ठीक है, तो वल अर्थ के अंदर तो जहन्नुम भी शामिल हो गई, लेकिन समावात और अर्थ के अलावा जो है वो जन्नत, जन्नत इसके अलावा है। ठीक है, अल्लाह ताला का अर्श ये भी इसके अलावा है, समावात और जमीन में अल्लाह का अर्श शामिल नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो हर चीज को जानते हैं ना, अर्श के मुतालिक सारी खबरें भी अल्लाह ताला को हैं कि ये अर्श जो है इसको कौन उठाया हुआ है, फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। तो कौन कौन से ये फरिश्ते हैं, कैसे उन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है, ये सब इल्म अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, तो ये फरमाया उन्होंने कि अल्लाह ताला को सब चीजों की पूरी खबर है, अलावा समावात वल अर्थ के अल्लाह और भी सब चीजों को जानता है, तो उसको कोई क्या बतलावेगा। तुम उसको क्या जतला रहे हो झूठ बोल करके, उसको क्या तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। इससे मालूम हुआ कि हक ताला को जो तुम्हारे मुतालिक इल्म है कि तुम ईमान नहीं लाए वही सही है। और तीसरा अमर कभी कभी है जिसके ये मुर्तकिब होते हैं वो ये है कि ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर एहसान रखते हैं, जो नहायत दर्जा गुस्ताखी है कि देखिए हम ना लड़े ना भिड़े मुसलमान हो गए, हम लड़े भिड़े बगैर ही मुसलमान हो गए। ये एहसान जताते थे कि दूसरे जो कबीले वाले लोग हैं ना, उन्होंने तो आपके साथ जंगें लड़ी और फिर जो है ना वो जब जंग में शिकस्त खा गए तो फिर वो मुसलमान हुए, लेकिन हमने तो आपसे कोई जंग नहीं लड़ी, हम तो ऐसे ही आकर के आपके सामने मुसलमान हो गए, तो गोया के एहसान जतला रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग बगैर जंग के आकर के मुसलमान हुए थे। ठीक है, तो वो चूंकि झूठ नहीं बोल रहे थे ना, सच बोल रहे थे, क्योंकि वो दिल से भी ईमान लेकर के आए थे और जुबानी तौर पर भी वो अपने ईमान का इकरार कर रहे थे, इस वजह से उनके बारे में ऐसी आयतें नाजिल नहीं हुई। लेकिन इन लोगों के बारे में ऐसी आयतें क्यों नाजिल हुई, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे। अब जब झूठ बोलता है ना बंदा, तो अब उस बंदे के साथ एक बोगस हो जाता है। ठीक है ना, जो आपसे आके झूठ बोलता है ना, ये झूठ एक ऐसी यानी मकरूह अमल होता है कि इस मकरूह अमल से हर शख्स को नफरत होती है। ठीक है, झूठे को भी नफरत होती है झूठ से। कैसे झूठे को झूठ से कैसे नफरत होती है, कोई आप में से बताएगा झूठे को झूठ से कैसे नफरत होती है, हालांकि तो वो खुद झूठ बोल रहा होता है। इस जुमले को या कोई एक्सप्लेन कर सकता है। झूठ झूठ एक ऐसा अमल है जिससे हर एक को नफरत होती है, हत्ता के झूठे को भी नफरत होती है। इसका क्या मतलब है, झूठे को झूठ से नफरत? इस जुमले का मतलब समझ में आता है, झूठे को झूठ से नफरत का क्या मतलब? इसका मतलब ये है, वो झूठ को भी सच मानने लग जाता है। क्या मतलब? नहीं, झूठे को झूठ से क्यों नफरत होती है? झूठे को झूठ से इसलिए नफरत होती है कि जब वो खुद झूठ बोलता है ना, तो उस वक्त उसको नफरत नहीं होती। ठीक है, जब वो खुद झूठ बोल रहा है ना, तो उस वक्त नफरत नहीं होती उसको झूठ बोलने से, लेकिन उसको नफरत उस वक्त होती है जब कोई दूसरा शख्स आकर इससे झूठ बोलता है और इसको पता चल जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचता कि क्या हो गया अगर ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मैं भी तो दूसरों से झूठ बोलता हूं, तो ये अगर मुझसे झूठ बोल रहा है तो कौन सी ऐसी बुरी बात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये उस वक्त भूल जाता है कि ये भी दूसरों से झूठ बोलता है, इसको उस वक्त ये याद रहता है कि मुझसे क्यों झूठ बोला जा रहा है। ठीक है ना, यानी झूठा भी दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि उससे ये आके सच बोलेंगे, हालांकि ये दूसरों से झूठ बोला करता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि झूठ एक ऐसी चीज है कि जिससे हर कोई कराहियत करता है, हर कोई नापसंदीदा समझता है झूठ बोलने को, खुसूसन जब उसके साथ झूठ बोला जा रहा हो। ठीक है, तो जब कोई शख्स शख्स झूठ बोलता है ना, और जिससे बोल रहा है उसको मालूम है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है ना,
तो अब दिल में एक शदीद नफरत पैदा हो जाती है, बुग़्ज़ पैदा हो जाती है, हो जाता है, ठीक है, उस शख्स के बारे में जो आपसे आके झूठ बोल रहा है। जब बुग़्ज़ पैदा हो जाता है ना, अब उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है, अब उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। जैसे वो आकर के आपको बहुत ही जो है वो अच्छा तोहफा ला करके दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने के साथ से आके आपको तोहफा भी दे रहा है। अब आपका क्या ख्याल है, आपको उसका तोहफा अच्छा लगेगा? ऊपर ऊपर से तो आप उसका तोहफा एक्सेप्ट कर लेंगे शायद मसलहतन किसी भी वजह से, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो ये सोच रहे होंगे कि कैसा कैसा यानी झूठा इंसान है, कैसा बुरा इंसान है कि मुझे धोखा दे रहा है ये, ठीक है, और उसके ऊपर जो है मुझे तोहफे भी ला करके दे रहा है, और मेरी जो है वो आगे पीछे से तारीफें भी कर रहा है, हालांकि कितना झूठा है ये, ठीक है। तो क्या वो फिर झूठ बोलना छोड़ देगा? नहीं, बदकिस्मती से ऐसा मामला नहीं होता। वो दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि इससे झूठ ना बोले, लेकिन अपना झूठ बोलना उसको याद ही नहीं रहता, ठीक है, इस वजह से इस मामले से ना कोई झूठ बोलना छोड़ता नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब कोई शख्स झूठ बोल रहा होता है आकर के आपके पास, और आपको मालूम होता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। जब नफरत पैदा हो जाती है ना, अब उसकी हर बात बुरी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यही मामला जो है वो अल्लाह ताला के साथ कभी मामला यही हुआ कि जब ये लोग आकर के अल्लाह के रसूल से झूठ बोल रहे थे ना, अब जो है उनकी हर बात जो है ना वो बुरी, ठीक है, कि भाई एक तो इन्होंने झूठ बोला, ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने धोखा देने की कोशिश करी नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने ये करी कि एहसान जतला रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, यानी अब उनका हर अमल जो है ना वो नेगेटिव खाते में ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनली आकर के झूठ बोला था। अब उसके बाद जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको जो है वो बुरा ही गर्दान रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मामला होता है झूठ बोलने वाले शख्स के साथ। तो फरमाया कि इसलिए कि खतः नजर गुस्ताखी के तुम्हारे इस्लाम से मेरा क्या नफा हो गया, ठीक है, तुम जो है वो खाली यानी अल्लाह ताला नबी रसूलुल्लाह सलाम से कह रहे हैं कि आप लोगों को कह दिए कि भाई तुम्हारे इस्लाम लाने से ना मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, और इस्लाम लाना आने से मेरा क्या जरूर हो गया, अगर तुम इस्लाम नहीं लेकर के आते तो मुझे कौन सा तुम नुकसान पहुंचा रहे थे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी ही आखिरत का नफा था, और झूठे होने में भी तुम्हारे ही दुनिया का नफा है, कि कत्ल व कैद से बच गए तो मुझसे एहसान रखना महज जोहल है, यानी मेरे ऊपर एहसान ना जताओ, ठीक है, तुम जो आकर के अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इसमें जो है तुम्हारे दुनिया का नफा है कि अगर तुम ऐसा ना करते तो फिर हम तुमसे जिहाद करते, तुम्हें कत्ल व गारत करते, तुम इस कत्ल व कैद से बच गए। तो भाई जो भी तुम कर रहे हो ना, तुम अपने नफे के लिए कर रहे हो, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, तो एहसान मत जतलाओ। बल्कि हकीकत क्या है, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी, बशर्ते कि तुम इस दावे ईमान में सच्चे हो, ठीक है, यानी तुम्हें जो है वो अल्लाह ताला ने रास्ता दिखलाया कि इधर आकर के तुम ईमान हासिल कर सकते हो, ठीक है। ये हिदायत, यहाँ पर हिदायत से मुराद ये हिदायत, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको ईमान की तौफीक दे दी, ठीक है, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको यानी ये रास्ता दिखला दिया। हिदायत के कई मानी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हिदायत का मानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रास्ता दिखलाया अपने नबी तक आने का, ठीक है। अब ईमान लाना जो है ये तुम्हारा अपना इख्तियार है, ठीक है, तो यही है कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी, बशर्ते कि तुम इस दावे ईमान में सच्चे हो, क्योंकि ईमान बड़ी नेमत है और बिदून तालीम व तौफीक हक ताला के नसीब नहीं होता। तो अल्लाह ताला की इनायत है कि ऐसी बड़ी नेमत अता फरमा दी, बस धोखे और एहसान जतलाने से बाज आओ, और ये याद रखो कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की सब मख्फी बातों को जानता है, और इसी इल्म मुहीत की वजह से तुम्हारे सब आमाल को भी जानता है, और उन्हीं के मुवाफिक तुमको जजा देगा, फिर उसके सामने बातें बनाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अदरवाइज जो है मारूफ़ मसाइल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात बस याद रखने की है कि ये जो इन्होंने आखिर में फरमाया ना कि बातें बनाने से क्या फ़ायदा, ये बात हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, तो आगे इसको जरा डिस्कस करते हैं। मारिफ़ मसाइल में फरमाते हैं कि साबिका आयात में बताया गया है کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقویٰ پر ہے. ٹھیک ہے نا, جو آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے, جو ایک باطنی چیز ہے. یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظاہری اعمال سے پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک دل کی چیز ہے, کیونکہ یہ جو ہم نفلی اعمال کرتے ہیں نا, نفلی اعمال, ٹھیک ہے, چاہے نفلی نمازیں ہوں, چاہے نفلی روزے ہوں, ٹھیک ہے, چاہے جو ہے وہ نفلی عمرے ہوں, ٹھیک ہے, یہ تقوی کی علامت نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تقوی کی کا جو تعلق ہے وہ گناہ نہ کرنے سے, ٹھیک ہے, نافرمانی نہ کرنے سے. ٹھیک ہے, تو نافرمانی انسان کب نہیں کرتا ہے, یا نافرمانی نہ کرنے والا انسان کب کہلاتا ہے؟ کہ جب وہ نفلی اعمال نہ کرے یا نفلی اعمال کرے, تب وہ نافرمانی کرنے والا نہیں کہلائے گا یا کب کہلائے گا؟ ٹھیک ہے, اس کا ذرا بہت ہی کامن سینس سا جواب ہے, لیکن اگر آپ کی طرف سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہو. نافرمانی نہ کہنا, نہ کرنا, یہ کب کہلاتا ہے؟ نفلی اعمال کرے گا تو کیا ہم ایسے بندے کو کہیں گے کہ یہ نافرمانی نہیں کر رہا؟ یا کب ہم کہیں گے کسی بندے کو کہ یہ نافرمانی نہیں کر رہا؟ نفلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, تو اب نفل کے اگینسٹ کون سی دوسری چیز ہوتی ہے؟ نفل کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لفظ ہے جی, فرائض. ٹھیک ہے, فرائض آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے یعنی فرضوں پر پورا ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جو فرضوں پر پورا اتر رہا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نفلیں کرنے والا متقی نہیں ہوتا, بلکہ فرضوں پر پورا اترنے والا وہ متقی ہوتا ہے. اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فرائض کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسلمان کے اوپر کون کون سے فرائض ہیں, اگر بہت ہی موٹے موٹے الفاظ میں آپ اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے, کون کون سے فرائض ہیں ہمارے اوپر؟ بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بالکل بنیادی موٹے موٹے الفاظ, ان سے اگر کوئی فرائض گنوائے تو کیا کیا فرائض کہلائیں گے؟ نماز کو پڑھنا, زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا. ہاں, بس نماز, زکوٰۃ, روزے, تین فرائض بتا دیا آپ نے. ان تین کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, ایمان. ٹھیک ہے, ایمان جو ہے یہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے اسی انہی آیات کے تحت کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, اس کو کہتے ہیں ایمان. ٹھیک ہے, تو ایمان پہلا فرض ہے, دوسرا فرض نماز ہے, تیسرا فرض روزہ ہے, چوتھا فرض زکوٰۃ ہے, اور پانچواں فرض حج ہے. ٹھیک ہے, اور چھٹا فرض کسی کو معلوم؟ ایک لفظ یا یعنی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آپ باقی سارے فرائض کو جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ایمان, ان کے علاوہ بھی ایک فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سا والا فرض ہے؟ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ دینا. اچھا, بس یہی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں؟
हुकूक अल इबाद, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। वही बात आपने दूसरे अंदाज में कर दी। इस तरह से तो भाई बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि एक ही छोटे से जुमले के अंदर सबको समेट दें, ठीक है, या एक ही लफ्ज में सबको समेट दें, ठीक है, तो सारे दूसरे जो यानी जो छटा रह गया है ना, वो छटा ऐसे बयान करें कि उसके अंदर जो बहुत सारे जो बुरे काम है वो सब के सब शामिल हो जाए। ये क्योंकि ये अपनी जुबान से इजाना देना या हकूक लिबाद पर अमल करना, ये सब तो यानी अलग अलग आपने गिनवाने शुरू कर दिया ना, तो अलग अलग गिनवाने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक लफ्ज में जवाब दे देना था, छठा फर्ज, ठीक है। तो छठा फर्ज जो है उसका ताल्लुक है जिसको कि हम तकवे की डिस्कशन कर रहे हैं ना, तकवा, ठीक है। तो तकवा की डिस्कशन के अंदर तो ये बात आपको याद नहीं चाहिए, और भी आसान होना चाहिए आपके लिए जवाब देना, कि जो छठा फर्ज है वो है तमाम गुनाहों को छोड़ना, तमाम गुनाहों को छोड़ना, ठीक है, ये छठा फर्ज है, ठीक है। तो सिर्फ नमाज पढ़ लेना पांच वक्त की, सिर्फ जो है वो रमजान के रोजे रखना, सिर्फ जो है वो जकात दे देना, सिर्फ ईमान ले आना, या सिर्फ हज कर लेना, ठीक है ना। इनके अलावा भी एक फर्ज है जो कि हर उस चीज को छोड़ना जिसको छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है। तो अब उसके अंदर छह चीजें तो अभी हमने पढ़ी हैं सूरह हुजरात के अंदर 12 और 13 आयत के अंदर, राइट, कि तुम ला यसहर कौमन, मजाक ना उड़ाओ किसी का, और जो है वो गीबत ना करो, और लोगों के ऊपर लोगों को अलकाब से ना पुकारो, ठीक है ना, और जो है वो बदगुमानी ना करो, ठीक है। ये सारे ही तो गुनाह है ना, तो इन सारे गुनाहों को छोड़ना ये भी फर्ज है, ठीक है। तो जो इन गुनाहों को नहीं छोड़ता लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ता है, रोजा पाबंदी से रखता है, और जकात पाबंदी से देता है, और हज भी पाबंदी से करता है, ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है वो मुत्तकी नहीं कहला सकता, ठीक है। ऐसा शख्स मुत्तकी नहीं कहला सकता क्योंकि उसने जो छठा फर्ज था उसको पूरा नहीं किया। तो हमारा तो ये मामला है कि हम पूरा क्या करेंगे, हमें तो याद ही नहीं रहता कि ये भी फर्ज है, राइट। गुनाह को छोड़ना भी फर्ज है, ये तो हमें याद ही नहीं रहता, पता नहीं हम इसको नफली अमल समझते हैं शायद, ठीक है, या वो भी नहीं समझते, राइट, ऐसा नहीं है, ये फर्ज है, ठीक है, गुनाहों को छोड़ना फर्ज है। तो यही फरमा रहे हैं कि इज्जत और शराफत का मदार तकवा पर है, जो एक बातनी चीज है, क्योंकि यानी दिल से जो है वो गुनाहों को गुनाह समझना, और गुनाह अगर हो गए हैं तो उनके ऊपर तौबा करना, ठीक है, और गुनाह से नफरत करना, ये सब जो है वो इंसान के अंदर की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहरी चीज़ें जो है ना वो उमूमन वो नफिल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ज़ाहरी इबादात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, ज़ाहरी इबादात का लफ्ज़, ये नफलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो फ़राइज़ हैं ये ज़ाहरी इबादात नहीं है, ये आमाल नहीं है आपके, ये तो कर्ज़ा है, कर्जा, जो कि कर्जा आपने उतारना है, ठीक है ना, ये कोई एहसान नहीं कर रहा आप किसी के ऊपर, पांच वक्त की नमाजें, फर्ज नमाजें पढ़ के, ठीक है, रमजान के 30 रोजे रख करके किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो कर्जा उतार रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो जाहिरी अमाल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, ये फराइज के ऊपर नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये नफलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और तकवा जो है इसका ताल्लुक बातनी चीज से है, ठीक है, यानी तमाम गुनाहों को छोड़ देना, अल्लाह ताला की हर किस्म की नाफरमानी से तौबा करना। तो अल्लाह ताला ही इसको जानते हैं कि किसी शख्स के लिए अपने तकद्दस का दावा जायज नहीं है, ठीक है। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फला तुजक्कु अनफुसकुम, कि अपने जानों को मुजक्की करार मत दो, कि तुम बहुत तजकिए वाले हो गए हो, तुम बहुत जो है वो पाक साफ हो गए हो, ठीक है। तो फला तुजक्कु अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, वो ज्यादा जानता है कौन तुम में से ज्यादा तकवा वाला है, ठीक है। तो किसी शख्स के लिए अपने तकद्दस का दावा जायज नहीं है, कि अपने आप को मुकद्दस करार दे रहा है। मज़कूर सदर आयात में एक खास वाकये की बिना पर यह बताया गया है कि ईमान का असल मदार कल्बी तस्दीक पर है, इसके बगैर महज जुबान से अपने को मोमिन कहना सही नहीं है, ठीक है, यानी महज जुबान से अपने आप को ईमान वाला कहना, जबकि दिल के अंदर अभी तक तस्दीक नहीं करी है ईमान के तमाम मामलात की, तो ये जायज़ नहीं है।
اس پوری صورت میں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تعظیم و تکریم کا، پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا ہے۔ ختم صورت پر یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جتنے تم نیک اعمال کر رہے ہو اگر ایمان نہیں ہوگا نا، یہ تین جو ہے وہ تینوں ایک ہی بات جو ہے وہ تین دفعہ کری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان، تصدیق قلبی، تصدیق قلبی بھی تو ایمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بھی ایمان ہی کا جز ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یعنی لب لباب یہ ہوا کہ سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان ہے تو اعمال قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال مقبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، تو آخری کی جو آیات ہے نا 14 سے لے کر کے 18، تو اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے، ایمان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شان نزول ان آیات کا کیا ہے کہ واقعہ اس آیت کے نزول کا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قحط شدید کے زمانے میں حاضر ہوئے۔ ایک شدید قحط جو ہے وہ یعنی سرزمین عرب کے اندر پڑا ہوا تھا، تو اس زمانے میں یہ لوگ حاضر ہوئے۔ یہ لوگ دل سے تو مومن نہیں تھے، محض صدقات حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلام لانے کا انہوں نے اظہار کیا، اور چونکہ واقع میں یہ مومن نہیں تھے، اسلامی احکام و آداب سے بے خبر اور غافل تھے، تو انہوں نے مدینہ کے راستوں پر غلاظت و نجاست پھیلا دی۔ کیونکہ بہت ہی جاہل قسم کے لوگ تھے، تو بالکل راستوں کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہونا شروع کر دیا، اور نجاست جو ہے اپنی اور اپنے جو مواشی تھے، مویشی وغیرہ، گھوڑے وغیرہ ہوں گے، تو ان کی نجاست جو ہے وہ راستوں میں پھیلا دی، حالانکہ یہ ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ قضاء حاجت کے لیے بستی سے دور جایا جاتا تھا، اس زمانے میں کوئی باتھ رومز وغیرہ کا اور سینیٹری ڈرینیج وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو فارغ ہونے کے لیے نا، اپنے نجاست سے فارغ ہونے کے لیے بہت دور جاتے تھے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے پھر جو ہے وہ انسان فارغ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور راستے کے اندر ہی ایسا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ بازاروں میں اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھا دی، کچھ ایسا معاملہ کیا تاجروں کے ساتھ کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے، جب چیزیں جو ہیں وہ گھٹ جائیں تو پھر قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، تو انہوں نے کچھ اس قسم کا معاملہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لانے کا کیا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا، تیسرے آپ پر احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ سے برسر پیکار رہے، آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، پھر مسلمان ہوئے، ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اس لیے آپ کو ہماری قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہی ہوتا ہے نا، جب کسی کے اوپر احسان جتاتے ہیں تو پھر اب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی اب میری قدر کرو، ٹھیک ہے، میری آؤ بھگت کرو، آگے پیچھے میرے پھرو۔ تو یہ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیہیو کر رہے تھے کہ گویا کہ اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں، جو شان رسالت میں ایک طرح کی گستاخی بھی تھی کہ اپنے مسلمان ہو جانے کا احسان آپ پر جتلایا، اور مقصود اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی دور کریں۔ تو ان کے آنے کا مقصد دراصل یہی تھا خالی، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو مسلمان کر کے، پھر اس کے بعد مسلمان قرار دے کر کے مسلمانوں کے صدقات کے مستحق بن جائیں گے، زکوٰۃ وغیرہ کلیکٹ کریں گے تاکہ ان کی محتاجی دور ہو جائے۔ اگر یہ واقعی اور سچے مسلمان ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا، خود اپنا ہی نفع تھا ان کا، یعنی آخرت کا فائدہ ہو جاتا ہے ان کا۔ اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب اور احسان جتلانے پر مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہے اب تک سو فار؟ اچھا، اس کے بعد ولیکن قولوا اسلمنا، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعوی ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلمنا کہہ سکتے ہو، کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے، اس لیے لفظی اعتبار سے ایک درجے کی اطاعت ہو گئی، اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلمنا کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوتا ہے उसका एक लफ्जी मानी होता है और एक इस्तेलाही मानी होता है, ठीक है। तो लफ्जी मानी और इस्तेलाही मानी में अक्सर फर्क हुआ करता है, ठीक है। जैसे इस्लाम लाने का जो लफ्ज है इस्लाम, ठीक है, इसका लफ्जी मानी क्या होता है, जिसको लिटरल ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, या वर्ड वर्डली ट्रांसलेशन कहेंगे उसको, ठीक है। तो लफ्जी मानी ये होता है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना, ठीक है, झुक जाना, अपने आप को हवाले कर देना, ठीक है, अताअत कबूल कर लेना, यानी हुक्म मानने का इरादा कर लेना, जंग छोड़ देना, ठीक है, मुखालफत छोड़ देना, ये सारे मुख्तलिफ मानी होते हैं इस्लाम के, ठीक है। ये सारे लफ्जी मानी होते हैं लफ्ज इस्लाम के। और लफ्ज इस्लाम का इस्तिलाही मानी क्या होता है, ईमान ले आना, ठीक है। इस्तिलाही मानी क्या होता है, ईमान ले आना, ठीक है ना। ये बात आप अपने पास अगर लिख भी लें तो बाद में आसानी होगी कि लफ्जी मानी तो ये सारे हो गए, झुक जाना, सुपुर्द कर देना, जंग छोड़ देना, अतात इख्तियार कर लेना, ठीक है ना, ये सारे लफ्जी मानी है। और इस्तिलाही मानी है ईमान ले आना, ठीक है। तो यहां पर जो अल्लाह ताला इनको कहना है ना कि तुम लोग कहो कि असलमना, तो यहां पर मतलब इसका है कि हमने अतात इख्तियार कर ली जाहिरी अमाल के अंदर, ठीक है। तो ये बात सच होगी क्योंकि ऐसा तो उन लोगों ने वाकई कर लिया था, सही। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इस्लाम और ईमान एक है या कुछ फर्क है, ठीक है। तो क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इस्लाम लाना और ईमान लाना, या दोनों एक ही चीज है। तो ऊपर की तकरीर से मालूम हो गया कि इस आयत में इस्लाम के लुगवी मानी मुराद है, इस्तिलाही मानी मुराद ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इस आयत से इस्लाम और ईमान में इस्तिलाही फर्क पर कोई इस्तदलाल नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ये नहीं कह सकते इस आयत के की बुनियाद से, की बुनियाद पर, कि इस्लाम और ईमान में कोई इस्तिलाही फर्क है, ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो दोनों मामला को अलग अलग डील कर रहे हैं, इस्लाम लाना और ईमान लाना दोनों अलग अलग चीजें लग रही हैं इस आयत के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्कशन की ना कि वलाकिन कुलू असलमना, तो यहाँ पर असलमना से मुराद जो है वो असलमना का लफ्जी मानी है, इस्तलाही मानी नहीं है। इस्तलाही ईमान और इस्तलाही इस्लाम अगरचे मफहूम व मानी के एतबार से अलग अलग हैं, कि ईमान इस्तलाही शरा में तस्दीक कल्बी का नाम है, यानी अपने दिल से अल्लाह ताला की तौहीद और रसूल की रिसालत को सच्चा मानना, और इस्लाम नाम है आमाल ज़ाहिरा में अल्लाह ताला और उसके रसूल की अतात करने का। लेकिन शरीयत में तस्दीक कल्बी इस वक्त तक काबिल एतबार नहीं जब तक उसका असर जवारह के अमाल व अफाल तक ना पहुंच जाए, जिसका अदना दर्जा ये है कि जुबान से कलमाए इस्लाम का इकरार करे, ठीक है। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये जो इस्तलाह शरा में ईमान तस्दीक कल्बी का नाम है, ठीक है। क्या मतलब कि आपने हदीस जिब्राइल सुनी है जिसमें कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते कि एक आदमी आया जो कि बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ था और उसके बाल भी जो है बहुत अच्छे से बने हुए थे, और मदीना मुनव्वरा का रहने वाला भी नहीं था क्योंकि लोग उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन मुसाफिर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर मुसाफिर होता बाहर से आया होता तो उसके कपड़े इतने साफ सुथरे नहीं हो सकते थे और उसकी हालत जो है वो इतनी बनी सवरी नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो अजीब मामला था वो कि मकामी भी नहीं था और मुसाफिर भी नहीं लग रहा था। ये शख्स आकर के नबी अलैहिस्सलाम के बहुत करीब बैठ गया, इस तरह से कि घुटनों को अपने नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ जोड़ लिया। फिर उसने आकर के आपसे से सवाल करने शुरू कर दिए, मल इस्लाम, ठीक है, कि इस्लाम क्या है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ठीक है, कि तौहीद का इकरार करना और नमाज पढ़ना और रोजे रखना और ज़कात देना, ठीक है। फिर उसने पूछा मल ईमान, ईमान लाना क्या है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने का जवाब क्या दिया कि
اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا وغیرہ. پھر اس کے بعد اس نے مل احسان کے احسان کیا ہے، یہ تیسرا سوال کیا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ اس جواب کا نہ مجھے علم ہے نہ تمہیں علم ہے. ٹھیک ہے، پوچھنے والے کو بھی علم نہیں ہے اور جس سے پوچھا گیا ہے اس کو بھی یہ بات پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علامات قیامت بتائیں کہ ایسا ایسا ہوگا کہ عمارتیں بنانے میں ایسے لوگ آپس میں یعنی مقابلہ کیا کریں گے کہ جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، اور بیٹ یعنی جو مالکہ ہے وہ جو 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 باندی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی. ٹھیک ہے، اس طرح کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ جو حدیث جبرائیل ہے، اس حدیث جبرائیل سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو حدیث سے پتہ چلتی ہے بات وہ بھی تو شریعت ہی ہوتی ہے نا. تو اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی یعنی دل سے کسی بات کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اعمال ظاہرہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جو بھی حکم دیا ہے کرنے کا. ٹھیک ہے، تو وہ کام کرنا شروع کر دینا. لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوتی جب تک اس کا اثر جوارح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے. جوارح کہتے ہیں جو اعضاء اور جوارح ہیں، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اعضاء اور جوارح کہلاتے ہیں. جب تک ہمارے اعضاء اور جوارح جو ہیں وہ اعمال اور افعال نہ کرنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک نا یہ ایمان جو کہ دل میں انسان کے آ چکا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اعتبار نہیں کیا جائے گا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس اسلامی معاشرے میں وہ شخص مسلمان نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہے کہ بھئی دل سے تو میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہاں دل میں میرے ایمان آ چکا ہے، تو جو اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں، قاضی ہے، ٹھیک ہے، حاکم ہے یا محلے کے لوگ ہیں، وہ ایسے شخص کو مسلمان نہیں تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے، تو مسلمان اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جب وہ اعمال و افعال بھی کرنے شروع کر دیں مسلمانوں جیسے. ٹھیک ہے، اور ادنا درجہ اس کا کیا ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، ادنا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، کیونکہ زبان بھی جو ہے یہ بھی تو ایک باڈی پارٹ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو کم از کم اس باڈی پارٹ سے یعنی اپنی زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کر لے تب وہ مسلمان کہلائے گا. خالی یہ کہہ دینا کہ نہیں میں نے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا مسلمان اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کا، کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا کہ اگر اس کو مسلمان ماننے سے معاشرے والوں نے انکار کر دیا، قاضی صاحب نے انکار کر دیا، تو اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ کہے بھائی ہو کیئرس، آئی ڈونٹ کیئر، تم لوگ مانو نہ مانو، میں تو دل سے مومن ہو چکا ہوں. تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہے کہ معاشرے والے اس کو اعتبار مسلمان اعتبار کر لیں، مسلمان مان لیں، تو اس سے کیا اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا یا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی زندگی میں؟ کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں؟ معاشرے میں مسلمان مان لیا جانا، اس سے کیا کیا چیزیں مشروط ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کا تعلق ہوتا ہے؟ نکاح کے معاملات. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو مسلمان ہی نہیں تسلیم کیا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. اور کوئی چیز اس کے علاوہ؟ نکاح کے معاملات نہیں کیے جائیں گے اس سے. اور کوئی چیز؟ حج پر اس کو جانے نہیں دیا جائے گا، चलें ठीक है। हाँ अगर रास्ते में वाकई पहरे वगैरह बिठाए गए हों, अब आज तो कल तो ये सारे पहरे वगैरह भी खत्म हो गए, वो तो हज पे जाना तो चलें ठीक है, हज पे नहीं जान दिया जाएगा, उसके अलावा कोई चीज़। अगर मर गया तो क्या करेंगे? मौत तो किसी को भी आ सकती है ना, तो इस शख्स को भी तो मौत आ सकती है। हाँ उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी ठीक है, और इसके बाद उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा ठीक है, क्योंकि उसके ईमान का एतबार ही नहीं है। जुबान से कहता फिर रहा है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु ये तो नहीं कहा ना उसने ठीक है ना। जब उसने ये नहीं कहा तो मर गया अगर तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा ठीक है, नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी जाएगी, कोई अपनी बेटी उसके निकाह में नहीं देगा ठीक है ना। और अगर इसका बाप या इसकी माँ ठीक है, या इसका कोई और रिश्तेदार मुसलमान था, वो मर गया तो उसकी विरासत में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा ठीक है। अगर इसका बाप मुसलमान था, ये मुसलमान जो है वो नहीं हुआ, या इसने इकरार नहीं किया जुबान से कि मैं कि यानी कलमा नहीं पढ़ा इसने ठीक है ना, बस ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, तो मुसलमान हो गया हूँ ठीक है ना, तो अब इसके इस बात का एतबार नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से अगर इसका बाप मुसलमान था या पहले मुसलमान हो चुका था और इकरार भी कर चुका था अपने मुसलमान होने का ठीक है, उसके इस्लाम को तस्लीम भी कर लिया गया था, तो अब अगर इसके बाप का इंतकाल हो गया तो उसके बाप की जो विरासत तकसीम होगी उसमें इसको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि ये काफिर है, इसके इस्लाम का एतबार नहीं किया जा रहा अभी तक ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसी तरह अगर किसी मुकदमे में मुसलमान की गवाही रिक्वायर्ड है तो इसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा उस मामले में ठीक है। निकाह का जो वो होता है गवाह फॉर एग्जाम्पल। अच्छा इसी तरह इस्लाम अगरचे आमाल जाहिरा का नाम है लेकिन शरीयत में वो इस वक्त तक मोतबर नहीं है जब तक दिल में तस्दीक ना आ जाए, वरना वो निफाक है ठीक है। मुनाफिकत इसी को कहते हैं कि ऊपर से तो कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, लेकिन दिल में उसके अभी तक ईमान नहीं है, उसने तस्दीक नहीं करी है, तो ऐसा शख्स जो है वो मुनाफिक कहलाएगा। तो इस तरह इस्लाम व ईमान मबदा और मुंतहा के एतबार से तो अलग अलग है कि ईमान बातिन और कल्ब से शुरू होकर जाहिर आमाल तक पहुंचता है, और इस्लाम अफआल जाहिरा से शुरू होकर बातिन की तस्दीक तक पहुंचता है, मगर मिस्दाक के एतबार से इन दोनों में तलाजुम है। तलाजुम का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। तो फरमा रहे हैं कि ईमान इस्लाम के बगैर मोतबर नहीं और इस्लाम ईमान के बगैर शरण मोतबर नहीं ठीक है। शरीयत में ये नहीं हो सकता कि एक शख्स मुस्लिम तो हो मोमिन ना हो, या मोमिन हो लेकिन मुस्लिम ना हो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ठीक है। तो माशाल्लाह हजरत ने खुद ही अपने अल्फाज में इतने अच्छे अंदाज में समझा दिया है कि शरीयत में ये हो ही नहीं सकता कि किसी को आप कहें कि जी मोमिन तो है लेकिन ये बस मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये जुबान से अभी तक इकरार नहीं कर रहा और नमाजें वगैरह नहीं पढ़ता और कुछ और नहीं करता, लेकिन हाँ ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ, जिस वजह से हम इसको मोमिन कहेंगे और हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे अगर इसका इंतकाल हो गया, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे ठीक है। नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता ठीक है भाई, मोमिन है तो मुस्लिम भी होना पड़ेगा, और उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम है ना तो उसको फिर आपको मोमिन भी मानना पड़ेगा, इसलिए कि आपको उसके दिल का हाल नहीं मालूम ठीक है। मगर ये कलाम इस्तिलाही ईमान और इस्लाम में है, लुगवी मानी के एतबार से हो सकता है कि एक शख्स मुस्लिम हो मोमिन ना हो, जैसे तमाम मुनाफिकीन का यही हाल था कि जाहिरी अतात अहकाम की बिना पर मुस्लिम कहलाते थे मगर दिल में ईमान ना होने के सबब मोमिन नहीं थे। वल्लाहु सुभान व तआला आलम। ठीक है जी, तो अब हम हमारे लिए इसके अंदर ना एक तो इल्मी बहस थी ये, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई थी कि भाई एक चीज़ जो है वो है भी और नहीं भी है, और लुगवी माने क्या होते हैं और इस्तेलाही माने क्या होते हैं और शरी इस्तेलाह क्या होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी एक इल्मी डिस्कशन थी, ठीक है। तो अब उसमें से जितने भी आपको समझ में आया, उम्मीद है कि आपको सारी समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात पूछने की है तो आप ज़रूर से पूछें इसको, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कुरान हमारे लिए किताब हिदायत है, ठीक है, तो अब हमने इससे अपने लिए भी तो हिदायतें लेनी है ना, खाली इल्मी डिस्कशन करके अपने मालूमात में तो इजाफा नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमारे लिए भी ना इसके अंदर एक बड़ी अहम हिदायत की बात है, ठीक है, जो कि हमें अपने रोज़मर्रा में याद रखने की बहुत अशद ज़रूरत है। वो ये है कि हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, ठीक है। वो ये है कि दीनदारी जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई है, ठीक है, पहले तो ऐसा मामला हुआ था कि दीनदारी सिरे से तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी ना, ठीक है, बिल्कुल ही दुनियादारी चल रही थी। इंडियन फिल्में देखते थे, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुओं ही के तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इंडियन फिल्में देख देख करके हिंदुओं की तरह से ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं, हलाल क्या है, हराम क्या है, और पर्दा क्या है, नमाज क्या है, किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं। मौसीकी जो है वो खुल यानी फुल लाउड म्यूज़िक जो है घरों में चल रही है, और फिल्में देख भी रहे हैं, फिल्में देखने के लिए जो है वो सिनेमा थिएटर्स भी जा रहे हैं, और यानी बेहिजाब जो है वो ज़िंदगी गुजर रही है, कोई तमीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दुनियादार वाली ज़िंदगी कहलाती है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी और बहुत सारे लोग जो हैं वो दीन की तरफ वापस आए, ठीक है। तो दीन की तरफ आ करके बहुत माशाल्लाह दीनदारी के कुछ आमाल भी शुरू हो गए, और साथ साथ जो है वो आमाल के साथ साथ जो है ना, यानी जो हाथ पैर वाले आमाल होते हैं उनके साथ साथ जो है वो हमारी जुबानी भी जो है वो भी बहुत सारे दीनी अल्फाज से शनासा हो गई, ठीक है। बहुत सारे दीनी अल्फाज से, जैसे पहले कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते थे, माशा अल्लाह नहीं कहते थे, सुबहान अल्लाह नहीं कहते थे, ठीक है ना। तो अब दीनदार होने के बाद क्या होता है कि बात बात पर अल्हम्दुलिल्लाह, बात बात पर सुबहान अल्लाह, ठीक है ना। तो इस तरह के कलमात जो कि खालिसतन दीन का जुज है, तो ये कलमात जो है वो जुबान से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक और भी मामला होता है कि जो अल्लाह ताला के ऊपर जैसे ईमान वाली बातें हैं, तवक्कुल वाली बातें हैं, ठीक है ना, वो बातें भी जो है ना वो फिर हम करना सीख जाते हैं, ठीक है ना, बातें भी करना सीख जाते हैं कि जी अल्लाह ताला के ऊपर तो बड़ा तवक्कुल है और यकीन है हमारा अल्लाह के ऊपर, और हमारी नीयत जो है वो तो बहुत अच्छी है, और हम जो है वो इखलास वाले लोग हैं, ठीक है, हम तो इखलास वाले लोग हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये बातें जो हैं ये ज्यादा नहीं करनी चाहिए इस तरीके से अपने बारे में ना, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अमल जो है वो उससे मिलता जुलता नहीं है तो फिर इन बातों का फिर कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। खाली ये बातें करना अपने बारे में कि जी, जिससे कि ऐसा लगता है सुन करके कि जैसे कि हम विलायत कुबरा के दर्जे पर फाइज हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्लाह के ऊपर 100% ईमान जो है वो कामिल हो चुका है, यकीन कामिल हो चुका है, हमें जो है वो यानी इखलास हासिल हो चुका है वगैरह, इस तरह की बातें जो है ना ये उस वक्त तक फायदा नहीं देती हैं जब तक के हमारे अमाल से भी कुछ जाहिर ना हो रहा हो, ठीक है। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली अभी भी हाल ये है कि हम यानी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे होते हैं अपने बारे में, ठीक है, लेकिन हमारे अमाल उन क्लेम्स का साथ नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम जो है वो बहुत लंबी लंबी नफले नहीं पढ़ रहे और तहज्जुद की पाबंदी जो है वो हम नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम विलायत कुबरा के दर्जे पर नहीं पहुंचे, ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा। क्योंकि लंबे लंबे अमाल करना, बहुत ज्यादा नफली अमाल करना, ये मकसूद नहीं होता है, ठीक है, इसकी इसका इतना मसला नहीं होता कि भाई अगर आप ये इतने नफले नहीं पढ़ रहे तो फिर आप जो है वो अपने बारे में कोई अच्छी बात भी ना करें, नहीं, ये मकसद नहीं है। बल्कि मकसद कहने का ये है कि हमारे आमाल जो है
وہ اچھے خاصے گناہ والے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے خاصے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کے اوپر اصرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہوتے ہیں کافر، ٹھیک ہے، ہم کافروں کے طور طریقوں سے محبت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے اعمال سے اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے محبت میں شدید مبتلا ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سے بڑا تو ولی کوئی ہے نہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہم تو ولایت کبریٰ کے درجے میں فائز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً خصوصاً جب ہم اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اپنے مشائخ سے، اپنے جو ہے وہ ٹیچر سے بات کر رہے ہوں، اساتذہ کرام سے بات کر رہے ہوں نا، تو وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے فضائل نہیں گنوانے چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے مراتب جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے، بلکہ ان کے سامنے جانے کے لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو ان کے پاس اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنے فضائل، اپنے مراتب اور مناقب بیان کرنے کے لیے نہیں آئے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں، میرا اتنا کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، میرا اتنا کامل ایمان ہے، میرا اتنا توکل بن چکا ہے، یہ سب فضائل بیان کرنا ہوتا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، مشائخ کے سامنے جانا اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو جا کر کے نا کنونس کریں کہ آپ کتنے اونچے درجے کے مسلمان بن چکے ہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے سامنے جانے کا مقصد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، یہ ہمارے مسلح ہیں، ان سے ہم نے اپنی اصلاح کروانی ہے، اور اصلاح کروانے کے لیے اپنے عیب بیان کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیب بیان کریں تاکہ عیبوں کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عیب نہیں بھی بیان کرنا آتے ہیں یا اپنے کوئی عیب نظر ہی نہیں آتے ہیں تو کم از کم جو ہے نا وہ ان سے ایسے ہی گائیڈنس مانگنی چاہیے، ایسے ہی ان سے مشورہ مانگنا چاہیے کہ جی آپ کو میرے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے، خرابی نظر آتی ہے تو اس میں میری اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے، مجھے گائیڈ کر دیں کہ میں کس طریقے سے ان خامیوں کو دور کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہوتا ہے جس کو کہ اصلاح پسندانہ رویہ کہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایون اپنے مشائخ کے سامنے بھی جا کر کے نا وہ ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگتے ہیں، ہم ان سے کوئی ہدایات نہیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے ان سے مدد نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم الٹا جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے صراحتاً منع فرمایا ہے، قرآن کے اندر حکم ہے کہ نہ کرو تم یہ کام، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہم کرتے ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کر لیں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، دوسرا یہ کہ جب آپ کسی شیخ کے سامنے جاتے ہیں جن سے آپ نے اصلاحی تعلق بنایا ہے اور وہاں پر آپ اپنے فضائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بھائی شیخ صاحب بھی بیٹھے پھر سن ہی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اپنے فضائل بیان کرنا بند کرے تو میں اس کو کچھ سمجھاؤں، میں اس کو کچھ بتاؤں، لیکن اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیخ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، اصلاح کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود ہی جو ہے نا وہ اپنی تعریفیں وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں اور بات جب ختم ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی تعریف پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جانے کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی، ٹھیک ہے، تو اصلاح کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان یا تو اپنے عیبوں کو خود تلاش کر کے آئے اور شیخ کے سامنے اپنے عیب رکھے، جیسے کہ ایک بیمار شخص آتا ہے اس کو بیماریوں کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے سامنے آ کے اپنی بیماریاں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی بیماریوں کے اوپر اس کو دوائیں دیتا ہے، یا یہ کہ اگر آپ کو بیماریوں کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کون سی بیماریاں ہو چکی ہیں تو کم از کم آپ کچھ سمپٹمس بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ والی خرابی ہے، یہ والی خرابی ہے، اب اس خرابی کی بنیاد کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیجئے، ٹھیک ہے، تو اب شیخ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح سے پھر باقاعدہ آپ سے سوال جواب کرتا ہے، آپ کی جو ہے وہ کیس ہسٹری لیتا ہے اور آپ کے آگے پیچھے کے حالات آپ سے سمجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی
نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ والی جو ہے نا وہ روحانی بیماری ہے. تو اس روحانی بیماری کے علاج کے لیے میں آپ کو کچھ ذکر بتاتا ہوں, کچھ احتیاط بتاتا ہوں, کچھ طریقہ بتاتا ہوں. ان چیزوں کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے اندر سے اس روحانی بیماری, یہ روحانی بیماری آپ کے اندر سے دور ہو جائے گی اور آپ کو افاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بالکل یہ نا ایک ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور اس میں پھر آپ کو یعنی شیخ کو جو ہے وہ ڈاکٹر تسلیم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون متقی ہے. تمہیں خود اپنے مناقب جو ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ان عرابیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ آ کر کے جو ہے وہ احسان جتنانا شروع ہو گئے تھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کرنا شروع ہو گئے تھے, تو ان دعووں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ سورۃ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے ہمارا آج مکمل ہوا اس کلاس میں. اگر کسی کو کوئی سوال ہے آج کے ٹاپکس کے اوپر یا ان جنرل بھی, تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آج حدیث کی کلاس نہیں ہونی تھی, تو اسی وجہ سے تفسیری کلاس جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم ختم کر دیں گے, لیکن اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس 18 منٹ اور ہیں اس کلاس کے خام ختم ہونے تک. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز ریز ہینڈ کر کے بتا دیں تاکہ پھر آپ کا انتظار کیا جائے. اگر نہیں پوچھنا ہے تو پھر ریز ہینڈ نہ کریں تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں غالباً کسی کو کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.